कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमा बाणी राम स्फुरद अमल पंके रुह मुखम मुख सुरेन्द्रैराराध्यो श्रुतिगण शिखा उपगीत चरित जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा पारावारः सजल जलद श्रेणी रुचि सजल जलद श्रेणी रुचिर रमा वाणी राम स्फुरद अमल पंके रुह मुख सुरेन्द्रैराराध्यो श्रुति शिखा उपगीत चरित जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवतु मे
अनुवाद वह तुकी कृपा के यथा सागर हैं और उनका सुंदर वर्ण काले गहरे बादलों के झुंड के समान है। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी देवी द्वारा दिए गए कठोर दंड या कटु वाला आलोचना के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर अत्यधिक आनंद प्राप्त करते हैं। उनका मुख एक बेदाग दोष रहित पूर्ण खिले हुए कमल पुष्प के समान है। वे श्रेष्ठ देवी देवताओं और साधु संतों द्वारा पूजे जाते हैं और उनका चरित्र और उनके कार्यकलाप सर्वोच्च मूर्तिमान उपनिषदों द्वारा गीत रूप में गाकर महिमान्वित किए जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हों। अब दोहराइए, वे हेतु की कृपा के अथाह सागर हैं और उनका सुंदर वर्ण काले गहरे बादलों के झुंड के समान है। वे अपनी प्रेयसी लक्ष्मी देवी द्वारा दिए गए कठोर दंड या कटी आलोचना के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर अत्यधिक आनंद प्राप्त करते हैं। उनका मुख एक बेदाग खिले हुए कमल पुष्प के समान है। वे श्रेष्ठ देवी देवताओं और साधु संतों द्वारा पूजे जाते हैं और उनका चरित्र और उनके कार्यकलाप सर्वोच्च मूर्तिमान उपनिषदों द्वारा गीत रूप में गाकर महिमान्वित किए जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हों।
ये चौथा श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृपा पारावार जो कृपा के सागर है। पारावार मतलब सागर। कृपा पारावार भगवान का ये स्वभाव वर्णन कर रहे हैं जो बहुत कृपालु हैं। कितनी कृपा, जैसे समुद्र में जल ही जल भरा रहता है वैसे भगवान जगन्नाथ में केवल कृपा ही भरी हुई है। अनंत कृपा के सागर हैं। और उनके शरीर का रंग क्या है, सजल जलद श्रेणी रुचि रो सजल जो जल बरसाने वाले मेघ हैं सांवले मेघ उनके समूह श्रेणी के समान जिनकी शोभा है श्री जगन्नाथ जी सांवले हैं और कई प्रकार के बादल की शोभा उनमें है। सजल जलद अनेक प्रकार के होते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जलद श्रेणी रुचिरा, अनेक प्रकार के जलधर मेघों के समान उनकी कांति है, शोभा है। रमा वाणी राम और श्री जगन्नाथ जी रमा लक्ष्मी को आनंद देते हैं और वाणी श्री सरस्वती जी को जो उनकी पत्नियां हैं, भगवान की पत्नी है लक्ष्मी जी और सरस्वती जो सबके वाणी की अधिष्ठात्री हैं, स्वामी हैं, उन्हीं की कृपा से बोलने की शक्ति आती है, गाने की शक्ति आती है। तो वे सरस्वती भगवान जगन्नाथ के द्वारा आनंदित होती है। रमा राम वाणी राम राम रमयति जो रमाते हैं आनंदित करते हैं वे राम हैं। तो वे रमा को और वाणी को लक्ष्मी को और सरस्वती को रमाते हैं आनंदित करते हैं। लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ की खूब आलोचना भी करते हैं कभी कभी, कई प्रकार से गाली देती हैं, पर जगन्नाथ जी उसका आस्वादन करते हैं, उनको सुख होता है। रमा और वाणी के द्वारा जो रमाए जाते हैं आनंदित होते हैं, यह भी अर्थ है। लक्ष्मी जी कभी कभी जगन्नाथ को गाली देती हैं, ये दोनों बहन को लेकर क्यों बैठे हैं, सुभद्रा जी को बीच में रह करके बैठे हैं बलराम जी और कृष्ण, इस पर लक्ष्मी जी कहती हैं ये क्या अपने बहन को ही रख लिया है। लक्ष्मी जी व्यंगपूर्ण वचन बोलती हैं जगन्नाथ जी को, तो जगन्नाथ जी उससे बहुत आनंदित होते हैं। एक बार गीत गाया जा रहा था जनकपुर में, नहीं भगवान के विवाह कुंडिनपुर में, रुक्मिणी का विवाह हो रहा था, तो गाली गाया जा रहा था, स्त्रियां गाली गा रही थी। तो गाते 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 हैं कि हमने सुना है कि इन्होंने गोवर्धन उठा लिया था, लेकिन ये बिल्कुल झूठी बात है, एक रसगुल्ला इनसे नहीं उठ रहा है, ये खा नहीं रहे हैं, तो गोवर्धन कैसे उठा लिए थे। तो इससे प्रमाणित होता है कि झूठ बोला गया है, ये गोवर्धन नहीं उठाए थे, हम तब मानेंगे गोवर्धन उठाए थे जब रसगुल्ला और उठा लेंगे खा लेंगे। भगवान इस प्रकार के गाली से बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन हम लोगों का अधिकार नहीं है ऐसा गाली देने का, हमें तो उनकी प्रशंसा ही करनी चाहिए और उनका नाम गाना चाहिए। तो श्री भगवान लक्ष्मी जी से बहुत प्रेम करते हैं, रथ यात्रा के सातवें दिन हेरा सप्तमी आती है तो लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को खोजती हैं कि कहाँ गया था, हमसे बिना पूछे, हमारे परमिशन के बिना जगन्नाथ कहाँ गया था। तो जगन्नाथ जी को खोजती हैं और इसके बाद पीटती हैं कोड़ा से, कपड़े का कोड़ा बना लेती हैं और मारती हैं जगन्नाथ जी को। जगन्नाथ जी उस ताड़न का बड़ा आनंद लेते हैं। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें सब भक्त लोग रहते हैं। भगवान गुंडीचा मंदिर में चले जाते हैं, सात दिन रहते नहीं हैं, तो लक्ष्मी जी उनको खोजती हैं, कहाँ गए कहाँ गए, और जब मिलते हैं तो सीधे मारना चालू करती हैं। इस तरह भगवान जगन्नाथ की अद्भुत सब लीलाएं हैं। और उनका मुख कैसा है उसका वर्णन चैतन्य महाप्रभु करते हैं, स्फुरद उद्दीप्यमान है, चमक रहा है मुख, अमल और निर्मल है, निर्मल कमल के समान सुंदर, पंके रूह मुखा, मुख है जगन्नाथ जी का कैसा है, पंके रूह कमल के समान, अतिशय सुंदर, खिले हुए कमल के समान, स्फुरत और निर्मल, कमल खिल जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। तो खिले हुए निर्मल कमल के समान जिनका मुख है, सुरेंद्र ही आराध्य, और श्री जगन्नाथ देव सुरेंद्रों के द्वारा, श्रेष्ठ देवताओं के द्वारा और साधु संतों के द्वारा आराध्य पूजित होते हैं। ब्रह्मा जी, भगवान शिव, इंद्र देव, वरुण देव, ये सब देवता भगवान की पूजा करते हैं, आराध्य है उनके जगन्नाथ। और वेदों में जो शीर्ष स्थानीय है, सबसे फाइनल कंक्लूजन वेदों का जिसमें है, अर्थात उपनिषद, उपनिषद वेद के सार कहे जाते हैं, वेदांत। तो वेदांत में, उपनिषदों में जिनके चरित्र को, निर्मल चरित्र को गाया गया है, श्रुति शिखा, गीत चरिता, श्रुति शिखा मतलब जो वेद में सबसे सिरमौर है, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ वे है उपनिषद। तो उपनिषदों में भगवान की निर्मल कीर्ति गाई गई है, वेदांत में उपनिषदों में जिनके कीर्ति का बखान किया गया है, वेद जिनकी कीर्ति गाते हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ देव जो हमारे इष्ट देव हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं स्वामी। स्वामी मतलब मेरे नाथ, ये तो जगत के नाथ हैं ही, सारे जीवों के नाथ हैं, और मेरे स्वामी हमें निरंतर दर्शन दे करके आनंदित करते रहे। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवत में, रथारूढ़ो गच्छन पथि मिलित भूदेव पटलई, स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपदम उपाकर्ण सदय। श्री भगवान जब रथ पर चढ़ करके चलते हैं, रथारूढ़ गच्छन, रथ पर चढ़ करके चलते हैं अपने घर से मंदिर से गुंडीचा जाने के लिए, जब चलते हैं तो पथ में मिलित भूदेव, रास्ते में बहुत से पृथ्वी के देवता मिलते हैं, ब्राह्मण मिलते हैं झुंड के झुंड, और वे जगन्नाथ जी की स्तुति करते हैं, स्तुति प्रादुर्भाव, उन स्तुतियों को श्री जगन्नाथ जी सुनते जाते हैं और सुन करके बहुत दया भाव उत्पन्न होता है भगवान में, दया पूर्ण चितवन से सबको देखते जाते हैं और ब्राह्मणों की स्तुति से बहुत प्रसन्न होते हैं। भूदेव पटल ही, पटल मतलब झुंड के झुंड, भूदेव पृथ्वी के देवता उनकी स्तुति करते हैं, उसको सुनते जाते हैं। जिन लोगों ने रथ यात्रा देखा है वे समझ जाएंगे, उस जगन्नाथपुरी में भगवान बड़ी मस्ती से चलते हैं, कभी कभी रुक जाते हैं, बड़ी बड़ी बड़े बड़े हाथियों द्वारा रथ को खींचा जाता है, लेकिन रथ टस से मस नहीं होता है, कहीं वे रुक जाते हैं, कहीं धीरे धीरे चलते हैं और सबको देखते जाते हैं। भक्तों के द्वारा गाई गई स्तुति को सुनते जाते हैं, जैसे भक्त लोग आज भी सुनाते हैं मंदिर में रहने वाले, भगवान किसी भक्त का गीत सुनने के लिए रुक जाते हैं और कितना भी धक्का लगाया जाए चलता नहीं है रथ, वो तो जगन्नाथ जी की इच्छा जब होती है तब चलते हैं, नहीं तो उनको कौन चला सकता है। रथ को जाम करके देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कटक के पास एक बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के, उनके बारे में कथा है। उनका नाम था साल वेग, उनके पिता का नाम लाल वेग था। और इनकी माता एक ब्राह्मण कन्या थी, लेकिन एक यवन ने अपहरण करके उसके साथ विवाह किया था, तो उसी से सालवेग का जन्म हुआ। सालवेग जब किशोर अवस्था के हुए तब वे युद्ध कला का अभ्यास कर रहे थे, तलवार चलाना युद्ध में सीख रहे थे, लेकिन तलवार युद्ध सीखने के संदर्भ में उनके सिर में चोट लग गई, बहुत घातक, सिर कट गया। उनके पिता की मृत्यु हो गई थी युद्ध में, और सालवेग के सिर में घाव हो गया था, तो बेड पर पड़े पड़े अपनी माँ को कहते थे, माँ कुछ उपचार करो, मेरा घाव बढ़ता जा रहा है, सुख नहीं रहा। तो वो तो महान भक्त थी भगवान का, वो कहे कि बेटा तुम चिंता मत करो, कृष्ण ठीक करेंगे तुमको, तुम्हारे घाव को। उसके मुंह से निकल गया तुम रो मत, शांत रहो। 12 दिन में भगवान घाव को ठीक कर देंगे। तो साल भर प्रतीक्षा करने लगे, चिकित्सा चल रही थी, लेकिन वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि 12वां दिन आएगा, भगवान की कृपा से मैं ठीक हो जाऊंगा। जब 12वां दिन आया तब वे बहुत रोने लगे, कहते माँ अब तक घाव नहीं सूखा। तब उनकी माँ भगवान जगन्नाथ देव से विनय करने लगी कि आप हमारे बेटा का घाव सुखा दीजिए, अच्छा कर दीजिए, आप परम दयालु हैं, जैसे पांडवों की रक्षा किए, अनेक विपत्तियों से आप बचाए, ऐसे हमारे बच्चे की रक्षा कीजिए। और 12वां दिन पूरा होने पर रात में सालबेग लेटे थे बेड पर और उनका घाव अकस्मात ठीक हो गया, तो पूर्ण स्वस्थ हो गया अपनी माता की प्रार्थना से। तो इसके बाद वे जगन्नाथ जी के भक्त बन गए, बहुत बड़े। और उड़िया भाषा में उन्होंने बहुत सा गीत लिखा है, बड़े सुंदर गीत हैं। आहे नीला साईला प्रवण मत वारण, इस तरह के अनेक गीत हैं। और गीत के अंत में जो लिखते जाते हैं, कहे साल बेगहीना जाति रे मुजवना, गीत के अंत में कहते हैं कि मैं तो हीन जाति में जन्म लिया हूं, यवन हूं, मेरी प्रार्थना को हे जगन्नाथ देव आप स्वीकार कीजिए। कई प्रकार की प्रार्थना है, रासलीला पर भी उन्होंने लिखा है। एक बार जगन्नाथ जी का रथ है पूरा रुक गया, कई उपाय किए गए रथ को चलाने का, बड़े बड़े बलवान लोग रथ खींचने के लिए लगे, हाथी लगाए गए, लेकिन रथ नहीं चला। और ऐसी कथा है कि जब सालवेग आए और भगवान को गीत सुनाए तो गीत सुन करके जगन्नाथ चलने लगे, बस चल दिया। तो ऐसे भक्त हुए हैं जिनका गीत सुनने के लिए श्री भगवान रथ रोक कर खड़े रहे। और जब तक वे आए नहीं, जब तक गीत नहीं गाए तब तक नहीं चले। जो कई हाथियों के द्वारा खींचे जाने पर भी रथ नहीं हिला, वो सालवेग जी का गीत सुन करके तुरंत रथ चलने लगा। इससे सिद्ध होता है जगन्नाथ जी रथ को रोके थे और गीत सुन करके चले। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, रास्ते में अनेक पृथ्वी के देवता मिलते हैं और उनकी स्तुति को, उनके गीत को जगन्नाथ जी सुनते जाते हैं। उपाकरण बहुत ध्यान से आप कान लगा करके जगन्नाथ जी सुनते हैं और सुन करके दया भाव उमड़ती जाती है उनमें, दया उमड़ रहा है सदय। वैसे वे स्वयं दया के सिंधु हैं, सागर हैं, दया सागर। लेकिन उस सागर में भी उफान आ जाता है, दया में भी उफान आ जाता है जब स्तुति सुनते हैं, जब भक्तों के मुख से गीत सुनते हैं, तो भगवान अक्षय दयालु हो जाते हैं। रथ पर बैठे बैठे वे श्री बलराम जी के साथ सबको देखते जाते हैं। भूदेव पटल ही बहुत महत्वपूर्ण शब्द यहाँ है। भूदेव धरती के देवता, इस पृथ्वी पर देवता हैं ब्राह्मण, और भक्त साधु जैसे साल्वेग, भगवान सुनते जाते हैं उनका गीत। बहुत भक्त आते हैं रथ यात्रा में और वे अपनी अपनी भावना के अनुसार, रुचि के अनुसार भगवान को गीत सुनाते हैं। विशेष करके गीत गोविंद सुनाया जाता है भगवान को, वो बहुत प्रिय है। तो एक यवन कन्या के द्वारा गाया हुआ गीत मैं सुनाना चाहता हूं, उसी के मुख से यहां रिकॉर्ड लाया हूं, तो उसी को बजाया जाएगा। जय गोविंद। Thank you.
Thank you.
रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलय स्तुति प्रादुर्भावै स्तुति प्रादुर्भावम प्रतिपदम उपाकरण सदया। श्री जगन्नाथ भक्तों के स्तुति के प्रत्येक अक्षर को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उपाकरण है और दया भाव मरता रहता है भगवान में। दया सिंधु बंधु सकल जगता, श्री जगन्नाथ जी दया के सागर हैं और सकल जगतां बंधु सकल जगतां सर्व समस्त जीवा नाम समस्त जीवों के बंधु हैं। असली संबंधी असली माता पिता गुरु भाई सब कुछ वही है। एक मनुष्य का जितना भी संबंध हो सकता है किसी के साथ, पुत्र का संबंध किसी के साथ, पिता का संबंध किसी के साथ, पति का संबंध, तो ये सारे संबंध जगन्नाथ जी में है। वे सगुण समस्त जीवों के असली बंधु हैं। बंधु का अर्थ होता है जिसके साथ हमारा बंधन हो, संबंध हो। संबंध का अर्थ होता है सम्यक बंध, सम्यक नाता। तो श्री कृष्ण के साथ हम लोगों का असली संबंध है। इस जगत का जो संबंध है ये सब नकली है, वास्तव में है नहीं। हम मान लेते हैं इस संबंध को केवल भ्रम से, और असली संबंध जिसका साथ है उसको नहीं पहचानते हैं। तो वो है श्री जगन्नाथ कृष्ण। सकल जगतां बंध, सिंधु सदया, भगवान कृपा करके समुद्र के तट पर रहते हैं, समुद्र पर कृपा है उनकी। सबके प्रति दयालु हैं और समुद्र पर उनकी विशेष दया है कि उसके तट पर उसके घर के पास रहते हैं। सिंधु सदया, सिंधु सागर के प्रति विशेष दया है उनकी। ऐसे श्री जगन्नाथ मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे आंखों के सामने हमेशा रहे, हमें दर्शन देते रहे। जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ जी सारे जीवों के नाथ तो है ही, हमारे स्वामी हैं, सबके स्वामी हैं, हमारे स्वामी। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जगन्नाथ स्वामी। स्वामी उसे कहते हैं जो स्व का अधिकारी है। स्व का अर्थ होता है धन, और स्व का अर्थ है मैं अपना, जो मेरे पति हैं, मालिक हैं, वो स्वामी हैं। और पति को भी स्वामी कहा जाता है, हस्बैंड को स्वामी कहा जाता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जगन्नाथ जी हमारे स्वामी हैं, हमारे स्वामी हमारे आंखों के सामने नाचते रहे, दर्शन देते रहे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। और सातवें श्लोक में कहते हैं परब्रह्मा पीड़ा कुलय दलो फुल नित्य नैनो निवासी नीलाद्रव निखिल निहित चरण निहित चरणों अनंत शिवसी रसानंदी राधा रस बकुल राधिंगन सुख। श्री जगन्नाथ रसानंदी है, रस के आनंदी। रस का अर्थ है प्रेम, तो प्रेमानंद से वे आनंदित रहते हैं। रसानंदी तो प्रेमानंदी, प्रेम में आनंद लेते हैं। और विशेष करके श्री राधा के सरस शरीर का आलिंगन करके वे सुखी होते हैं। श्री जगन्नाथ को इसीलिए गीत गोविंद सुनाया जाता है, उसे सुन करके वे बहुत आनंदित होते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि राधा सरस बपु आलिंगन सुखा। श्री राधा के सरस बपु का आलिंगन करना ही जिन्हें सुखी कर पाता है। जिनका सुख है श्री राधा रानी का आलिंगन, हमेशा राधा रानी के कंधे पर बाह रखे रहते हैं श्याम सुंदर, यही उनका सुख है। अन्यथा थोड़ा सा विरह होने पर ये दुखी होते हैं, विलाप करने लगते हैं। तो राधा रानी का सरस बपू है और सरस बपू का शरीर का आलिंगन जगन्नाथ को सुखी करता है। और उनके सिर का आभूषण जो है वही परब्रह्म है, परब्रह्म ही सिर का आभूषण है, आपीड मुकुट है। भगवान जगन्नाथ जो पगड़ी बांधते हैं और मुकुट बांधते हैं तो वही वो परब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है ही जिनका मस्तक भूषण है, जिनके मस्तक पर मुकुट है और मुकुट साक्षात परब्रह्म है, और जिनके चरण भगवान अनंत के मस्तक पर रहते हैं। जब भगवान क्षीर समुद्र में सोते हैं तो सांप के बेड पर सोते हैं, शेष नाग के शरीर पर, तो उस समय भगवान के चरण शेष नाग के 1000 फणों पर विराजते हैं उनके मस्तक पर। तो चरण निहित चरण जिनके चरण रखे हुए हैं कहां, अनंत शिरसी, भगवान अनंत के संकर्षण के सिर पर रहते हैं। भगवान सांप पर सोते हैं लेकिन इनके चरण को श्री अनंत अपने मस्तक पर रखते हैं। जो चमचरण संवाहन करते रहते हैं, भगवान अनंत स्वयं भगवान हैं, लेकिन वे भी श्री कृष्ण के सेवक हैं, सेवा भाव से रखते हैं चरण को अपने सिर पर, निहित चरण अनंत शिरसी। रसानंदी राधा सरस बपुरा लिंगन सुखो, इस प्रकार जो परम ईश्वर हैं, अनंत शेष नाग जिनके सेवक हैं, परंतु ऐसे श्री भगवान राधा रानी के आलिंगन से सुखी होते हैं, उनके लिए तरसते रहते हैं। ऐसे जगन्नाथ मेरे स्वामी मेरे आंखों के सामने सदा रहे। जगन्नाथ स्वामी, जगन्नाथ स्वामी नैन पथगामी भवतु मे, हमें दर्शन देते रहे। इस प्रकार कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रार्थना जगन्नाथाष्टक श्री शंकराचार्य का बनाया हुआ है, परंतु हम भक्तों को यही बताया गया है कि ये चैतन्य महाप्रभु इसके रचयिता है। जो भी रचना किया हो तो जगन्नाथ जी की स्तुति है और उनके स्वभाव रूप आदि का वर्णन है। वर्णन बता रहा है कि ये चैतन्य महाप्रभु का ही लिखा हुआ है। जय श्री राधे, जय श्रील प्रभुपाद।